तीर्थंकर भगवंतों का शरीर भी केवल ज्ञान प्राप्ति तक औदारिक ही है, ठीक है। तो आहार निहार होता है या नहीं होता? यदि निहार ही नहीं है तो गृहस्थ अवस्था में तीर्थंकर के पुत्र पुत्री उत्पन्न होने का प्रसंग कैसे आएगा? अरे भैया थोड़ा और समझो इसको, तीर्थंकर की तो छोड़ो, तीर्थंकर के माता पिता को निहार नहीं होता, तीर्थंकर जिस माँ से जन्म लेते हैं उसको अशुद्धि तक नहीं होती। अब करो क्या करोगे? हाँ वो महापुरुष हैं, और तीर्थंकर ऐसे हमारे जैसे माँ के पेट से जाल में लिपटे हुए और मांस और खून से लिप्त नहीं आते हैं। ऐसे बिल्कुल बाहर आकर के ना उनको कोई पहुंचना धुलाना पड़ता है ना कुछ करना पड़ता है उनके लिए, इतने पवित्र होते हैं उनकी देह, पढ़िएगा उसमें तो मालूम पड़ेगा। अब रही बात जिनके निहार नहीं होता उनके क्या संतान उत्पत्ति नहीं होगी? ऐसा नहीं है। आपका प्रश्न है कि यदि निहार नहीं होता तो गृहस्थ अवस्था में पुत्र पुत्री उत्पन्न कैसे होंगे? तीर्थंकर के भी होते हैं और तीर्थंकर के माता पिता उनके भी निहार नहीं होता। तीर्थंकर तो जब केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते तब उनका आहार भी नहीं होता, लेकिन केवल ज्ञान से पहले गृहस्थ अवस्था में या मुनि अवस्था में उनके निहार नहीं होता। निहार के मतलब समझते, मलमूत्र की बाधा नहीं होती। निहार का मतलब मलमूत्र की बाधा नहीं होना, वो निहार कहलाता। और आहार भोजन तो करते हैं लेकिन उनके आमाशय में जाकर के वो वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाता 100%। जैसे कि अपन लोग को साइंस के हिसाब से देखें तो अपन दूध पीते हैं तो उसका 90% स्वस्थ व्यक्ति को दूध का 90% एब्जॉर्ब होता। 100 ग्राम पिया था 90 ग्राम एब्जॉर्ब हो जाएगा, 10 ग्राम जो है वो वेस्ट हो जाएगा, वो मल और मूत्र के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और उनके लिए वो भी नहीं होता, उनका पूरा 100% एब्जॉर्ब हो जाता है, तो निहार की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तीर्थंकर को भी, तीर्थंकर के माता पिता को भी, पर उनके बाकी सब चीजें नॉर्मल जैसे अपन के होते हैं वैसे ही होता है। ठीक है, प्रश्न तो उठता है मन में।